एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार ज्ञान गोष्ठी में, आज हम एक ऐसी आवाज की दुनिया में जा रहे हैं जिसने अमेरिकी साहित्य को आप कह सकते हैं कि हमेशा के लिए बदल दिया।
हाँ, और सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि नस्ल, पहचान, इतिहास, इन सब पर हमारी सोच को भी गहरा किया।
हम बात करें टोनी मॉरिसन की, नोबेल पुरस्कार विजेता।
बिल्कुल, टोनी मॉरिसन सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, वो एक ताकत थी। उपन्यासकार, निबंधकार, संपादक, और हाँ, 1993 में साहित्य का नोबेल जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला।
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना?
बहुत बड़ी, पर उनका कद, उनकी अहमियत इससे कहीं ज्यादा है।
हाँ, क्योंकि उन्होंने उन आवाजों को, उन अनुभवों को सेंटर स्टेज दिया जिन्हें अक्सर हाशिए पर रखा जाता था।
खासकर अश्वेत महिलाओं की जिंदगियां, उनकी अंदरूनी दुनिया, उनकी जटिलताएं, उसको उन्होंने अमेरिकी कहानी का, आप कह सकते हैं, मुख्य हिस्सा बना दिया।
उनकी भाषा, उसमें एक अलग ही जादू था, एक गहराई जो पढ़ने वाले को पकड़ लेती है, झिंझोड़ देती है।
सही कहा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि हम मॉरिसन के जीवन को समझें, उनके जो क्रांतिकारी विचार थे, उनकी जो कालजयी रचनाएं हैं, उनकी तहों में झांकें।
और ये भी समझें कि उनकी आवाज आज भी इतनी जरूरी क्यों लगती है।
बिल्कुल, तो शुरू कहां से करें? उस माहौल से जहां ये आवाज पली बढ़ी।
हाँ, ये सही रहेगा। उनका जन्म और लेखन का दौर, अमेरिका के लिए वो बड़ा उथल पुथल का समय था।
हाँ, जन्म हुआ 1931 में, मतलब महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन का दौर, और लिखना शुरू किया, या कहें कि पहचान मिली, उस वक्त जब अमेरिका में बड़े बदलाव हो रहे थे।
जैसे कि
जैसे सिविल राइट्स मूवमेंट जोरों पर था, ब्लैक पावर मूवमेंट की गूंज थी, नारीवाद की दूसरी लहर उठ रही थी, वियतनाम युद्ध का विरोध, समाज में एक बेचैनी थी, मंथन चल रहा था।
और उस समय लिटरेचर की दुनिया में कौन थे, साहित्यिक माहौल कैसा था?
देखिए, उस वक्त ज्यादातर तो श्वेत पुरुष लेखकों का ही दबदबा था। नॉर्मन मेलर, जॉन अपडाइक, ऐसे बड़े नाम थे।
तो अश्वेत अनुभव कहाँ था?
या तो उसे नजरअंदाज किया जाता था, या फिर उसे किसी बाहरी नजरिए से, मतलब स्टीरियोटाइप तरीके से दिखाया जाता था। पूरी तस्वीर नहीं आती थी सामने।
लेकिन बदलाव की आहट तो थी।
बिल्कुल थी। ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट जैसे आंदोलन थे जो अश्वेत कला, अश्वेत सौंदर्य शास्त्र पर जोर दे रहे थे। मॉरिसन का काम बीसी दौर में सामने आया,
पर वो थोड़ी अलग थी, है ना?
हाँ, उनकी राह थोड़ी जुदा थी। जहां कुछ आंदोलन बाहरी राजनीति, बाहरी अभिव्यक्ति पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, मॉरिसन किरदारों की अंदरूनी दुनिया में उतर रही थी, ऐतिहासिक यादों की परतें खोल रही थी, मिथकों का इस्तेमाल कर रही थी।
उनकी समकालीन और भी अश्वेत महिला लेखिकाएं थीं।
हाँ जरूर, माया एंजेलो थी, एलिस वॉकर, पॉल मार्शल, इन सब ने अश्वेत महिलाओं की कहानियों को सामने लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई।
फिर मॉरिसन की खास बात क्या थी?
उनकी खास बात ये थी मेरे ख्याल से कि वो रैंडम हाउस जैसे बड़े मेनस्ट्रीम पब्लिशिंग हाउस में एक सीनियर एडिटर थी, इतने ऊंचे पद पर थी। और वहां रहते हुए वो पूरी तरह से बिना किसी झिझक के अश्वेत नजरिए से लिख रही थी, बिल्कुल मौलिक, नया अंदाज। उन्होंने एक तरह से मुख्य धारा को मजबूर कर दिया कि वो अश्वेत अनुभव की गहराई को पहचाने, उसे सम्मान दे।
मतलब वो सिस्टम के अंदर रह के ही सिस्टम को बदल रही थी।
हाँ कह सकते हैं, जेम्स बॉल्डविन, राल्फ एलिसन जैसे बड़े अश्वेत लेखक भी थे उस समय, पर मॉरिसन की दुनिया, उनकी भाषा का जादू, वो कुछ और ही था।
और बाद में जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब बातें आईं, दुनिया ग्लोबलाइज हुई,
तब तो उनकी आवाज और फैली, ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंची, उनकी बातें और ज्यादा प्रासंगिक हो गई।
चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके बचपन में। उनका असली नाम तो कुछ और था।
हाँ, क्लोए आर्डेलिया वॉफर्ड। जन्म हुआ ओहायो के लोरेन शहर में, एक इंडस्ट्रियल टाउन था।
परिवार कैसा था?
वर्किंग क्लास, अफ्रीकी अमरीकी। उनके माता पिता जॉर्ज और रमा वॉफर्ड वो ग्रेट माइग्रेशन का हिस्सा थे, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर आए थे बेहतर जीवन की तलाश में।
इसका असर पड़ा होगा उनपे
बहुत। घर में अश्वेत लोक कथाएं सुनने को मिलती थीं, संगीत था, किस्से कहानियां थीं, वो माहौल उनकी रगों में बस गया। उनके माता पिता ने उनमें आत्मसम्मान भरा, नस्लवाद के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दी।
और ये चीजें बाद में उनकी लेखनी में भी दिखती हैं,
साफ झलकती हैं। वही बुनियाद थी। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही था, जल्दी सीख लिया था। फिर वो पढ़ने गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो तो ऐतिहासिक रूप से अश्वेत छात्रों का गढ़ रहा है।
बिल्कुल, वहां उन्हें एक ऐसा माहौल मिला जहां अश्वेत होना वो सामान्य था बल्कि एक ताकत थी। वो उसे अपना बौद्धिक घर कहती थी।
और टोनी नाम भी शायद वही।
हाँ, उनका मध्य नाम एंथनी था, उसी से उन्होंने टोनी नाम अपना लिया। फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
उनकी थीसिस का विषय भी दिलचस्प था, है ना, फॉकनर और वर्जिनिया वुल्फ के कामों में आत्महत्या पर।
हाँ, ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य के गंभीर साहित्यिक रुझानों का संकेत देता है, उन गहराइयों में उतरने का।
निजी जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव रहे।
हाँ, शादी हुई जमैकन आर्किटेक्ट हैरल्ड मॉरिसन से, दो बेटे हुए, हैरल्ड फोर्ड और स्लेड, लेकिन 1964 में तलाक हो गया।
और फिर उन्होंने अकेले ही बच्चों को पाला, सिंगल मदर के तौर पर।
उस जमाने में ये बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। उन्होंने पहले सिरेक्यूज में टेक्स्ट बुक एडिटर का काम किया, फिर न्यूयॉर्क आ गईं, रैंडम हाउस में सीनियर एडिटर बनी।
रैंडम हाउस में सीनियर एडिटर, ये तो बड़ी जिम्मेदारी थी।
बहुत बड़ी, और उन्होंने वहां करीब 20 साल काम किया, पर वो सिर्फ नौकरी नहीं कर रही थी।
मतलब
संपादक के तौर पर उन्होंने कई नए अश्वेत लेखकों को मौका दिया, एंजेला डेविस, टोनी केट बम्बारा, गेल जोन्स, एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्हें मंच दिया। वो एक तरह से साहित्यिक दाई थी।
वाह, और ये सब करते हुए वो खुद भी लिख रही थी।
हाँ, ये तो कमाल था, उनका अनुशासन देखिए। अक्सर सुबह होने से पहले, जब बच्चे सो रहे होते थे, उस वक्त लिखती थी,
इतनी व्यस्तता के बीच।
हाँ, और इसी लगन का नतीजा था उनका पहला उपन्यास द ब्लूएस्ट आई, 1970 में आया, जब वो 39 साल की थी।
तो लेखन उनके लिए एक जुनून था, एक साधना, साथ में पढ़ाना भी जारी रखा।
हाँ, येल में, बार्ड कॉलेज में, और फिर लंबे समय तक, 1989 से 2006 तक, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहीं। अकादमिक जगत में भी उनका बहुत सम्मान था।
अब आते हैं उनकी लेखनी पर, उनके विचारों पर। उनका सबसे बड़ा योगदान क्या मानती हैं आप?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा योगदान एक ऐसी साहित्यिक भाषा, एक ऐसी कथा शैली का निर्माण करना था, जो अफ्रीकी अमेरिकी अनुभव की पूरी जटिलता को, उसके दर्द को, उसकी सुंदरता को, उसके इतिहास को, सबको समेट सके।
उनकी भाषा की बात तो हमने शुरू में भी की थी, वाकई अलग है।
हाँ, बहुत गीतात्मक है, उसमें लय है, कहीं बहुत सधी हुई मॉडर्निस्ट लेखकों जैसी सटीकता, तो कहीं अश्वेत लोक भाषा की मिठास, ब्लूज संगीत की लय, आध्यात्मिकता की गूंज।
सुरुचिपूर्ण भी और कच्ची भी एक ही साथ।
बिल्कुल, और उन्होंने ये सब किया बिना किसी हिचकिचाहट के, अश्वेत होकर। ये उनकी खास बात है।
इसका क्या मतलब है, बिना हिचकिचाहट के अश्वेत?
इसका मतलब है कि उन्होंने कभी ये जरूरत महसूस नहीं की कि उन्हें अपनी कहानियों को, अपने किरदारों की दुनिया को श्वेत पाठकों के लिए आसान बनाना है या समझाना है। उन्होंने माना कि अश्वेत अनुभव अपने आप में पूरा है, केंद्रीय है, पाठक को उसमें आना होगा, उसे उसकी शर्तों पर समझना होगा।
ये तो बहुत पावरफुल स्टैंड है।
हाँ, उनकी एक किताब है, आलोचनात्मक किताब, प्लेइंग इन द डार्क, व्हाइटनेस एंड द लिटरेरी इमेजिनेशन। उसमें वो इसी बात पर जोर देती हैं कि कैसे अमेरिकी साहित्य में श्वेतता को भी अक्सर अश्वेत किरदारों या उपस्थिति के सामने रखकर ही परिभाषित किया गया है।
अच्छा, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है, और इसी से जुड़ा है उनका रीमेमरी का कॉन्सेप्ट, है ना, खासकर बिलव्ड में। ये क्या है
रीमेमरी? ये सिर्फ याददाश्त या मेमरी नहीं है, ये उससे ज्यादा गहरा है। मॉरिसन कहती हैं कि कुछ अतीत, खासकर जो बहुत दर्दनाक हो, वो सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो जिंदा रहता है।
जिंदा रहता है कैसे?
वो आपके माहौल में, आपके रिश्तों में, आपके शरीर में बसा रहता है। जैसे बिलव्ड में गुलामी का जो आघात है, वो एक भूत बनकर घर में रहता है। वो अतीत है, पर वो वर्तमान में मौजूद है, सक्रिय है, सांस ले रहा है।
ये तो समय की हमारी सामान्य समझ से अलग है। हम तो सोचते हैं वक्त आगे बढ़ता है, अतीत पीछे छूट जाता है।
बिल्कुल, ये पश्चिमी सोच से अलग है। मॉरिसन के लिए इतिहास एक बोझ भी हो सकता है, जो वर्तमान पर छाया रहता है। रीमेमरी इसी जीवित अतीत का रूपक है।
तो ये सिर्फ एक लिखने की टेक्निक नहीं है, ये दुनिया को देखने का नजरिया है।
हाँ, और इसीलिए शायद वो अपनी कहानियों में समय को अक्सर तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती हैं। कभी कहानी आगे जाती है, कभी पीछे, अलग अलग किरदारों के नजरिए से कहानी खुलती है।
और वो जादुई यथार्थवाद का इस्तेमाल भी करती थी।
हाँ, पर उनका जादुई यथार्थवाद लातिनी अमेरिकी लेखकों जैसा सजावटी नहीं था। वो अश्वेत लोक कथाओं, मिथकों, आध्यात्मिक विश्वासों से निकलता था। भूत प्रेत चमत्कार, ये सब उस अनुभव को दिखाने के लिए जरूरी थे, जहां हकीकत और मिथक, जिंदा और मुर्दा के बीच की लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं।
ये उस बिखरी हुई, चोट खाई हुई याद को आवाज देने का तरीका था।
बिल्कुल, और उन्होंने हमेशा अपनी कहानियों के केंद्र में उन लोगों को रखा जिन्हें इतिहास भूल गया था। अश्वेत महिलाएं, बच्चे, गरीब, विस्थापित लोग, उनकी अनकही कहानियों को आवाज दी।
उन्होंने अपने नोबेल भाषण में भाषा की ताकत पर भी बात की थी।
हाँ, कि भाषा कैसे हमारे जीवन को बनाती है, उसे अर्थ देती है।
चलिए अब उनकी कुछ खास किताबों पर बात करते हैं, द ब्लूएस्ट आई से शुरुआत हुई
1970 में, एक छोटी अश्वेत लड़की पेकोला ब्रीडलव की कहानी। वो समाज के गोरेपन के, सुंदरता के मानकों के बोझ तले इतनी दबी है कि नीली आंखें चाहती है।
ये आंतरिक नस्लवाद, मतलब खुद से ही नफरत करने लगने का कितना दुखद चित्रण है।
बहुत मार्मिक। फिर 1973 में आई सूला, दो सहेलियों की कहानी। दोस्ती, अच्छाई बुराई, समाज के नियम मानने और तोड़ने के सवाल बड़े जटिल ढंग से उठाए गए इसमें। और यही मिडेलियन शहर आता है जो बाद में भी उनके उपन्यासों में दिखा।
और फिर 1977 में सॉन्ग ऑफ सोलोमन, इसने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई।
हाँ, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला। ये एक महाकाव्य जैसा उपन्यास है। एक नौजवान मिल्कमैन डैड अपने परिवार का इतिहास, अपनी जड़ों को खोजता है। मिथक, लोक कथा, इतिहास, यथार्थ, सबका गजब का मिश्रण है।
अगर किसी को मॉरिसन पढ़ना शुरू करना हो तो क्या ये अच्छी किताब है?
हाँ बिल्कुल, ये एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है, कहानी पकड़ कर रखती है।
और फिर आया मील का पत्थर, बिलविड, 1987 में।
बिलविड, इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला। गुलामी की विरासत पर शायद इससे शक्तिशाली कोई और साहित्यिक कृति नहीं है।
सिथी की कहानी, जो अपनी बेटी के भूत से प्रेतावाधित है, उस बेटी को उसने गुलामी के नर्क से बचाने के लिए खुद मार दिया था।
ओह, ये पढ़ना आसान नहीं है। ये आघात, स्मृति, माँ का प्यार, आजादी की कीमत, इन सब पर एक अविस्मरणीय उपन्यास है।
आपने बताया था कि इसे जब नेशनल बुक अवार्ड नहीं मिला था 1987 में, तो काफी प्रतिक्रिया हुई थी।
हाँ, 48 बड़े अश्वेत लेखकों और आलोचकों ने एक खुला पत्र लिखा था। उन्होंने अमेरिकी साहित्यिक जगत की आलोचना की और मॉरिसन के काम के महत्व को रेखांकित किया। उसके अगले ही साल इसे पुलित्जर मिला।
ये दिखाता है कि उनका काम कितना असर डाल रहा था। बिलविड के बाद भी उन्होंने लिखना जारी रखा।
हाँ, जैज 1992 आई, जो हार्लेम रेनेसा के दौर में सेट है। उसकी शैली जैज संगीत जैसी है, उतार चढ़ाव वाली। फिर पैराडाइज 1997, जो एक काल्पनिक अश्वेत यूटोपियाई शहर के पतन की कहानी है। इसे अक्सर बिलविड और जैज के साथ एक अनौपचारिक त्रयी की तरह देखा जाता है।
और बाद की किताबें,
अमर्सी 2008, होम 2012, गॉड हेल्प द चाइल्ड 2015, इनमें भी वो इतिहास की गहराइयों में उतरकर आज के मुद्दों की जड़ें तलाशती रहीं।
इतने जबरदस्त काम के लिए सम्मान भी खूब मिले, पुलित्ज़र, नोबेल।
हाँ, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड सॉन्ग ऑफ सोलोमन के लिए नोबेल पुरस्कार 1993 में मिलना तो ऐतिहासिक था ही। स्वीडिश एकेडमी ने कहा था कि उनके उपन्यास दूरदर्शी शक्ति और काव्यात्मक महत्व वाले हैं, जो अमेरिकी यथार्थ के एक अनिवार्य पहलू को जीवंत करते हैं।
ये सिर्फ उनका सम्मान नहीं था, है ना?
नहीं, ये पूरे अफ्रीकी अमेरिकी साहित्य और अनुभव का सम्मान था।
और 2012 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बराक ओबामा ने दिया था।
बिल्कुल, ये उनके कद को दिखाता है। उनका असर सिर्फ पुरस्कारों तक नहीं है, उन्होंने अमेरिका में नस्ल, गुलामी, इतिहास पर जो बातचीत होती है, उसका रुख मोड़ दिया।
अकेडमिक जगत में भी?
हाँ, यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में उनका काम पढ़ाया जाता है। 1993 में टोनी मॉरिसन सोसाइटी बनी, जो सिर्फ उनके काम के अध्ययन के लिए है।
और नए लेखकों पर उनका कितना प्रभाव है?
बहुत गहरा। कोल्सन व्हाइटहेड, जैस्मिन वार्ड जैसे आज के बड़े अफ्रीकी अमेरिकी लेखक उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, जेडी स्मिथ, चिमामांडा अंगोजी अदीची जैसे दुनिया भर के लेखक उनके असर को मानते हैं।
आज भी उनकी बातें प्रासंगिक हैं।
बहुत ज्यादा। जब हम नस्लीय न्याय की बात करते हैं, ऐतिहासिक स्मृति की, या #BlackLivesMatter जैसे आंदोलनों को देखते हैं, तो मॉरिसन का काम हमें उन मुद्दों की जड़ों तक ले जाता है। वो आज भी हमसे बात करती हैं।
उनके कुछ कोट्स तो बहुत मशहूर हैं, वो नोबल भाषण वाली लाइन,
हम मरते हैं, शायद यही जीवन का अर्थ है, लेकिन हम भाषा रचते हैं, शायद यही हमारे जीवन का माप है।
भाषा में उनका कितना गहरा विश्वास था।
और वो जो अपने छात्रों से कहती थी,
हाँ,
जब आपको ये नौकरियां मिलें तो बस याद रखें कि आपका असली काम ये है कि अगर आप स्वतंत्र हैं तो आपको किसी और को स्वतंत्र करने की जरूरत है। अगर आपके पास कुछ शक्ति है तो आपका काम किसी और को सशक्त बनाना है।
ये तो सिर्फ लिखने की नहीं, जीने की बात है।
बिल्कुल। और नस्लवाद पर उनकी वो टिप्पणी, नस्लवाद का असली गंभीर कार्य ध्यान भटकाना है।
ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे नफरत और भेदभाव असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
हाँ, और बिलविड से वो लाइन, स्वयं को मुक्त करना एक बात थी, उस मुक्त स्वयं का स्वामित्व प्राप्त करना दूसरी बात थी। आज़ादी पा लेना ही काफी नहीं, उस आज़ाद पहचान को अपनाना, उसे जीना, वो एक अलग संघर्ष है।
सॉन्ग ऑफ सोलोमन से भी एक अच्छी पंक्ति है।
हाँ, यदि आप हवा के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो आप उस पर सवारी कर सकते हैं। मतलब जीवन की मुश्किलों में कभी कभी लचीला होना, प्रवाह के साथ बहना जरूरी है।
एक बात जो शायद कम लोग जानते हैं वो है संपादक के तौर पर उनका काम।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रैंडम हाउस में रहते हुए उन्होंने सिर्फ खुद नहीं लिखा बल्कि कई और अश्वेत लेखकों की आवाजों को दुनिया तक पहुंचाया। ये भी उनकी एक बड़ी देन है।
उनके उपन्यासों को स्क्रीन पर लाना कितना मुश्किल रहा होगा, इतने जटिल, इतने गहरे।
बहुत मुश्किल। उनकी भाषा की काव्यात्मकता, किरदारों की भीतरी दुनिया, समय का आगे पीछे होना, रिमेमरी, इसे विजुअल में कैसे बदलें?
बिलवेड पर फिल्म बनी थी 1998 में, ओपरा विन्फ्रे थी उसमें।
हाँ, जोनाथन डेमी ने डायरेक्ट की थी। बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश थी पर उसे मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली और बॉक्स ऑफिस पर भी नहीं चली।
शायद उपन्यास की गहराई को पकड़ना मुश्किल था।
शायद। लेकिन 2019 में एक डॉक्यूमेंट्री आई, टोनी मॉरिसन, द पीसेज आई एम। वो उनके जीवन और विचारों को समझने के लिए बहुत अच्छी है। उसमें मॉरिसन के खुद के इंटरव्यूज हैं,
उनके नाटकों के रूपांतरण भी हुए।
हाँ, द ब्लूएस्ट आई, सूला के नाटक बने और एक ऑपेरा भी बना, मार्गरेट गार्डनर, जिसका लिब्रेटो मॉरिसन ने खुद लिखा था। ये उसी सच्ची कहानी पर आधारित है जिससे बिलवड भी प्रेरित थी।
तो कुल मिलाकर टोनी मॉरिसन की दुनिया में उतरना एक गहरा झकझोड़ने वाला अनुभव है।
बिल्कुल, वो हमें याद दिलाती हैं कि कहानियां, खासकर वो अनकही कहानियां, सिर्फ वक्त काटने के लिए नहीं होती। वो हमारी पहचान बनाती हैं, हमारा इतिहास बनाती हैं और हमारा भविष्य तय करती हैं।
और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि हमारे अपने समाज में, हमारे अपने परिवारों में कौन सी कहानियां दबी हुई हैं, कौन सी रीमेमरीज हैं जो हमें अनजाने में चला रही हैं।
क्या हम उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन्हें भाषा दे सकते हैं जैसा मॉरिसन ने सिखाया?
ये सवाल वो हमारे लिए छोड़ गए हैं सोचने के लिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।